36 से 42 में हम अपने लिए मुहासबे के नुक्ते नोट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी अलामत क्या है कि वो ख़यानत करता है। मसलन कैसे? मतलब आप देखिए कि ना, ख़यानत के मौजू को सामने रखते वक्त जब मुहासबा करेंगे तो फिर बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्या मैं बीवी होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ? क्या मैं सालेहा हूँ? क्या मैं आजिज़ मिजाज हूँ? क्या मैं शौहर के माल और औलाद की हिफाजत करती हूँ? क्या मैं अपने घर को बिगड़ने से बचाने का इरादा रखती हूँ? क्या मेरी इबादत का मामला दुरुस्त है? क्या मैं अपने साथ रहने वालों के हकूक़ पूरे करती हूँ? क्या यतीमों और मिसकीनों के साथ नरमी का मामला करती हूँ? क्या मैं अपने मामलात के साथ अच्छा या बुरा बर्ताव करती हूँ? क्या मुझे इस बात का एहसास है कि छोटी से छोटी नेकी को अल्लाह ताला खोल कर दिखा देगा? क्या मैं अपने अंदर से बुखल को खुरच चुकी हूँ? क्या मैं हक़ की गवाही देने का एहसास रखती हूँ? ये सवाल आपके अंदर जब जाएंगे ना तो एक हलचल मचा देंगे। और आयत 41 के बारे में आता है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? कहा, हाँ, मुझे अच्छा लगता है, सुनाओ। तो सहाबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और सूरत निसा पढ़ी। जब इस आयत पर आए तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लम ने हाथ के इशारे से कहा, बस आगे ना पढ़ो। इस सहाबी ने अल्लाह के नबी को देखा तो आपकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, आप रो रहे थे। आपके रोने का सबब यह एहसास था कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा, बताओ तुमने इंसानियत को मेरा पैगाम दिया था? हम सब अपना मुहासबा करें कि जिस एहसास ने अल्लाह के नबी को रुला दिया, आज हम भी कभी रोए, कभी हम भी तड़पे इस बात पर। क्या मैंने दुखी इंसानियत को अल्लाह का पैगाम दिया? क्या मैंने इस्लाम की इतनी प्यारी दौलत अपने तक तो महदूद नहीं रखी हुई? क्या मैं कुरान पढ़कर और सीखकर घर में तो नहीं बैठी रही? क्या अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से इसको दूसरों से दूर तो नहीं कर रही? सब नुक्ते हैं हमारे मुहासबे के। और आयत 43 में हमारे मुहासबे के नुक्ते क्या हैं? क्या मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे पता चल रहा होता है कि क्या कह रही हूँ? दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, क्या मुझे नमाज का तर्जुमा आता है? अगर नहीं आता तो देर ना करें, क्योंकि बेसमझी नमाज़ें बेरूह नमाज़ें, इसको हाईलाइट करें। क्या हमारी नमाज़ें रूह वाली हैं कि बेरूह नमाज़ें हैं? यह आपने मैंने खुद देखना है। ये वो चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में हलचल मचा देती हैं। फिर इसी तरह से ये भी देखना है कि नमाज में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है। तो गौर से सुने और पढ़ें कि नमाज में हम कहते क्या हैं। नमाज का तर्जमा हर एक को आना चाहिए, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसके बगैर रूह दीन की आ ही नहीं सकती। फिर आयत 59 में हम अपना जायज़ा ले सकते हैं, क्या मैं दिल की खुशी से अल्लाह के हुक्मों को मानती हूँ? क्योंकि इताअत के लफ्ज़ में दिल की खुशी छुपी होती है। हर काम दिल की खुशी से करो, अल्लाह हमारी खुशी बना दे इन इबादात को। ताकूत क्या है? हर वो ताकत जिसको अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बढ़ा जाना जाए। कुछ लोग जो होते हैं वो नमाज रोज़े हज की हद तक बड़े दीनदार होते हैं, एक एक सुन्नत पर झगड़ते हैं, नमाजों के वक्त पर झगड़ते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी के सारे फ़ैसले, शादी ब्याह और दूसरे मामले सारे शैतानी तरीक़ों पर करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहते हैं, क्या तुमने दीन को बुनियादी चीज़ों तक महदूद रखा है? नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी भी तुम्हारी अल्लाह और रसूल के तरीक़ों के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह हमें आज इसकी तौफीक अता फरमाए। ये बहुत मिसिंग फैक्टर है आज उम्मते मुस्लिमा की डिक्शनरियों में से। फिर आयत 65 की रोशनी में हम मुहासबा कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है वो अल्लाह के नबी के हुक्म की होती है। इसके ऊपर अपनी ज़िंदगी को पेश करना चाहिए। क्या मैं अपने मामलात में अल्लाह के नबी के फ़ैसलों को अहमियत देती हूँ? क्या मैं दिल की खुशी से अल्लाह के नबी की बातों को मानती और सुनती हूँ? आयत 71 से 76 मुहासबे के कुछ नुक्ते हैं, इनको नोट कीजिए। क्या आज हमें भी कुछ लोगों की ऐसी पुकार सुनाई देती है जो पुकार पुकार कर कहते हैं, हमें यहाँ से निकालो क्योंकि यहाँ के रहने वाले जालिम हैं? अब देखिए पूरी दुनिया में जंगों की आग लगी हुई है और हम मज़े से हलवे पूड़ियाँ खा रहे हैं। अल्लाह हमें दूसरे मुसलमानों का दर्द महसूस करने वाला बना दे। क्या मैं काम के मौके पर जी तो नहीं चुराती? क्या जब अल्लाह के दीन को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं सुस्ती तो नहीं करती? कुरान पाक में जितनी जिहाद की आयात हैं वो सब मुसलमानों से मेहनत का तकाजा करती हैं। ज़रूरी नहीं कि सरहदों पर जाकर लड़ने का मौका हर एक को मिले, लेकिन तालीम और दावत का जिहाद हर एक के लिए खुला हुआ है। जो बंदा अपने आप को इसके अंदर पाएगा, अल्लाह ताला खुद ब खुद इसके लिए रास्ते आसान करता जाएगा। इसको हाईलाइट करें, तसल्ली मिलेगी आपको इंशाल्लाह। इसके बाद अब अगली आयतों में भी मुहासबे के चंद नुक्ते हैं, नोट कीजिए। क्या मुझे यकीन है कि मौत कभी भी किसी लम्हे भी आ सकती है? बाज़ औक़ात इंसान पूरी कोशिश कर लेता है कि मौत से बच जाए, लेकिन मौत फिर भी आकर रहेगी। असल यह है कि मौत से डरने की बजाय, मौत से बचने की बजाय, मौत के बाद के लिए तैयारी कर ली जाए, और इसकी तैयारी करने का वक्त ये दुनिया है। हाईलाइट करें, ये दुनिया क्या है? मौत के बाद के लिए तैयारी करने का वक्त। इस ज़िंदगी में हमने आखिरत के लिए कोशिश कर ली तो अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे लिए बाकी चीज़ों में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और आयत 82 में भी हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है। क्या मैं कुरान पाक में गौर व फिक्र यानी तदब्बुर करती हूँ? असल बात पता क्या है, हम अपनी ज़िंदगियों पर बड़ा तदब्बुर करते हैं। मसलन, हाय बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियों के हाथ पीले करने हैं, घर बड़ा लेना है, और ये करना है और वो करना है। ये तदब्बुर ही तो हो रहा है। बेनियाज हो जाएं हर चीज़ से, अल्लाह आपके मामले खुद ही सुधार देगा। ये चीज़ें फिर हमें अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब पर गौर व फिक्र करने से रोकती हैं। इसके लिए इंसान को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तमन्ना करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह तू वाकई हमें इस किताब में गौर व फिक्र की तौफीक दे, आमीन। और इसमें तदब्बुर करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया के सारे गम दूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं इस पारे में कितने बड़े बड़े अहकाम हैं, कंपाउंड यानी ऐसे अहकाम कि जिनको सुनते वक्त महसूस हो रहा है कि पुरअमन माशरा कैसा होता है। फिर अब इसके बाद आयत नंबर 83 से मुहासबे के कुछ नुकात हैं। इसका ताल्लुक अफवाह साजी से है, र्यूमर्स आम करना। इसके क्या नुकसानात हैं ज़रा सा इसको देखिए, इस पे बात होगी। असल में इस आयत में इज्तमाही ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत असूल दिया गया है कि जिसकी बात है उस तक पहुंचा दो। यहाँ हम अपने आप को चेक करते हैं, क्या जब मैं किसी की कोई बात सुनती हूँ तो तहकीक करने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं सुनी हुई बात को लेकर उड़ा तो नहीं देती? क्या मैं इधर की बात सुनकर उधर तो नहीं करने लगती? याद रखिए ये सब खयानते हैं। किसी माशरे का चैन रुखसत हो जाता है जब लोग ऐसी खयानत का शिकार हो जाते हैं। आयत 86 में फिर इस्लाम के आदाब सिखाए जा रहे हैं। इसकी बुनियाद पर एक मुसलमान गैर मुस्लिम से पहचाना जाता है। अस्सलामु अलैकुम कहना, याद रखिए कि ये एक जुमला नहीं है, ये एक दुआ है। किस तरीके से हम दूसरों को सलामती की दुआएं देते हैं? हम जब किसी से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब क्या है कि तुम सलामत रहो। किस से? बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से। और हमें नहीं पता किसी के सलाम से हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। यहाँ हम मुहासबे का नुक्ता ले सकते हैं। क्या मैं इस्लाम को वाकई सलामती का कलमा समझती हूँ? क्या मैं लोगों को अपनी दुआओं से महरूम तो नहीं कर देती कुछ और कह के? आप ज़रा वो अल्फाज जहन में लाइए था जो अस्सलामु अलैकुम के अल्टरनेट में आज के दौर में पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें दुआएं लेने और दुआएं देने वाला बना दे। फिर आयत 101 में कसर नमाज के बारे में बताया गया है। किसी तरह आयत 102 में बाद जमात नमाज की अहमियत के बारे में बताया गया कि वो कितनी अहम है। आयत 105 से आगे तो वो वाक़या है जिसमें ख़यानत पर बात की गई। वाक़े का मफहूम क्या है कि मदीना में एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक शख्स जो मुनाफिक था, इसने किसी की ज़िरह चोरी की, यानी वो लिबास जो जंग में दुश्मन से बचने के लिए पहना जाता है, बहुत कीमती होता था। खैर, ज़िरह एक लोहे की जंजीर का लिबास था जो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। मुनाफिक ने चोरी की और धोखे के साथ किसी यहूदी के पास आमदन रख दी। इसको नहीं बताया कि चोरी की चीज़ है, और चलाकी क्या खेली कि अगर बिलफर्ज चोरी की बात निकली तो लोग तलाशी लेंगे और इसके घर से निकल आएगी। अगर कुछ दिन बाद बात ठंडी हो गई तो फिर इसके पास से वापस ले आऊँगा, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ معاملہ کیا کہ جس کی چوری ہوئی تھی اس نے مقدمہ چلایا اور یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو کہا کہ بھائی تلاشی لو۔ ہوا کیا کہ جس کے پاس زرا تھی اس نے اسے آٹے میں چھپایا ہوا تھا کیونکہ وہ قیمتی چیز تھی۔ اتفاق سے جب اس نے زرا اٹھائی اور پہلے اپنے گھر اور پھر یہودی کے گھر گیا تو آٹے کی وجہ سے راستے میں نشان بن گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ بھی پتہ چلے تو قیامت کے دن تو سارے پول کھلنے ہی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ الزام یہودی پر لگ رہا، چور منافق تھا جو کہ خود کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کے خاندان کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اپنی برادری کا جو ہے، یہ بات سوچ کے سارے خاندان نے اس کی جھوٹی حمایت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی تک بات پہنچی، انہوں نے خوب چکنی چکڑی باتیں کی تھیں۔ اب اللہ کے نبی ایک انسان تھے، ان کو جب تک اللہ تعالیٰ وحی سے نہیں بتاتے تھے اصل حقیقت نہیں پتہ چلتی تھی۔ گمان ہوا کہ کہیں اس کے خاندان کی حمایت کی وجہ سے رسول اللہ غلط فیصلہ نہ کر دیں، کیونکہ بشر تھے، ظاہری حالات پہ قیاس کیا جاتا ہے ہمیشہ ایسی چیزوں میں، اور یہودی بے گناہ مارا جائے اور مسلمان بچ جائیں، یہ بات اللہ کو گوارا نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں کہ دیکھو، اگر کوئی خیانت کرے گا، چاہے کسی غیر مسلم کا حق بھی مارے، تو بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کو آگاہ کر دیا گیا کہ ان کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ نہ کر دیں۔ یہاں ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ جب میں چپکے چپکے گناہ کی بات کرتی ہوں تو مجھے یاد ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے۔ کیا میں برادری کی وجہ سے تو کسی کا انتخاب نہیں کرتی؟ کسی کی حمایت صرف اپنی برادری کا ہونے کی وجہ سے تو نہیں کرتی؟ بہت گہرا نقطہ ہے غور و فکر کا۔ دیکھیے، خاندان کی حمایت اچھی چیز ہے، حق پہ ہو تو، باطل پہ نہیں۔ پھر آیت 105 کو سامنے رکھیں تو تھوڑی سی خیانت پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کریں، جبکہ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ امانت اور خیانت کا فرق کیا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں مختصر سی بات میں دیکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کے بارے میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ خیانت کو عربی میں غش کہتے ہیں، غل بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، غشہ بھی کہہ سکتے ہیں، غل غل یہ ڈفرینٹ پرونانسیشن سے بھی آتے ہیں، اور خدا دھوکہ خدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خیانت دھوکے اور فریب کا نام ہے۔ اس کا دو طرح سے تعلق ہوتا ہے، ایک ہے خالق کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت۔ ذرا سوچیے، اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے، وہ کیا ہوگی؟ اگر آپ پہلے امانت کی تعریف نوٹ کر سکیں تو پھر انشاءاللہ خیانت کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ امانت کہتے ہیں کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، یعنی کسی نے آپ پر بھروسہ کیا اور وہ آپ نے پورا کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم خود، ہماری زندگی، ہمارا وقت، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہم سب اس کی امانتیں ہیں۔ جی، میں اور آپ تو اپنے بھی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اذیت بھی نہیں دے سکتے۔ سورۃ احزاب کی آیت 72 جو بالکل اینڈ پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان کی کہ ہم نے امانت پیش کی، سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تمہاری یہ زندگی جو با اختیار ہے، یہ امانت ہے، یہ ہمارے سب اعضاء امانت ہیں، کیونکہ یہ جسم ہم نے اللہ سے مانگا تو نہیں۔ تو جو چیز بن مانگے مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے۔ اب ہم اگر ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ کانوں، دل، دماغ اور ہر اس چیز کا استعمال جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ خیانت ہے۔ ہر عضو کا غلط استعمال خیانت ہے۔ نوٹ کیجئے، جس حصے کو جس مقصد کے لیے بنایا وہی کرنا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے، اللہ معاف کرے، ہومو سیکشولیٹی سے لے کر کھانے پینے اور ہر طریقے میں اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں زندگی کے ساتھ خیانت تو نہیں کر رہی؟ کیا میں اپنی آنکھوں کو اللہ کی امانت سمجھتی ہوں؟ کیا میں اپنے کانوں اور زبان کو اللہ کی امانت سمجھتی ہوں؟ اسی لیے اسلام میں خود کشی حرام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ خیانت کو اگر ہم بعد میں الگ سے بھی دیکھ لیں تو یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ लेकिन जो ज़्यादा बड़ी ख़यानतें हैं ना आज हमारे सामने, वो दूसरी किस्म है और वो है इंसानों के साथ ख़यानत। 20 से 25 किस्में। मसलन पहली ख़यानत क्या होती है, आप इस पे 1 2 3 करके आप इसको जमा करें। क्या कि किसी ने कोई चीज़ रखवा दी आपके पास, तो आपने इसको पूरी की पूरी वापस करनी है, ये नहीं कि बाद में मुकर जाएं या इसकी चीज़ इस्तेमाल कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप दूसरों से कोई चीज़ उधार लें, आरियातन लेते हैं, मगर उसकी सही इस्तेमाल नहीं की, गलत किया, मिसयूज़ किया या वापसी ना की। मसलन किसी से किताब ली, बाद में वापस नहीं की, इसे घर के इस्तेमाल की दूसरी चीज़ें लीं और वापस नहीं की, और ऐसा अमूमन सुस्ती की वजह से होता है। ये सोचते ही नहीं कि अगर हम मर गए तो क़यामत के दिन ये हम पर बोझ होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसमें अमानत नहीं इसमें ईमान ही नहीं। अमानत के साथ ईमान भी ख़त्म हो जाता है। दूसरे तुम्हारे ओहदे, तुम्हारी नौकरियाँ, ये सब अमानत है जी। अगर इनको पूरी तरह से अदा नहीं करोगे तो ये ख़यानत है। बाज़ दफ़ा नौकरी में कुछ चीज़ों की इजाज़त दी जाती है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़यानत है। इसी तरह कोई आपसे मशवरा ले ले तो मशवरे अपने मुफाद को सामने रखते हुए देना, ये भी ख़यानत है। इसी तरह ये भी ख़यानत की बात है कि घर किराए पर लिया और अब खाली नहीं कर रहे। इसी तरह बिजली और पानी का बेजा इस्तेमाल, ये सोच कर करना कि ये किराए में शामिल है। करते हैं लोग ऐसा जी, माले मुफ्त दिले बेरहम। याद रखिए, ये सब ख़यानत की किस्में हैं। जब तक आप दूसरों के लिए वो पसंद न करें जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो मोमिन नहीं हो सकते। इसमें हम अपना मुहासबा कर सकते हैं, क्या मैं अपने लिए जो पसंद करती हूँ वो दूसरों के लिए भी करती हूँ या नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें ख़यानतों से पाक रहने वाला बना दे। आयत 116 से लेकर चंद आयतों में शैतान के दो मुख्तलिफ हथकंडों का तذکرہ है। बास लोगों को इस आयत में भी गलती लगती है, कहते हैं कि कोई बात नहीं, शिर्क तो नहीं कर रहे। जी, ये भी बात नोट करने की है। अल्लाह ने कहा कि मैं शिर्क को मुआफ़ नहीं करता। तो पहली बात है कि शिर्क को कोई समझता ही नहीं। कितने लोग हैं जो शिर्क करते हैं लेकिन इनको पता ही नहीं और ख़ुद को मुशरिक नहीं समझते। दूसरी बात यह कि सारे ही गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। किसी के पास कोई जवाज़ नहीं कि मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ़ किया। लिहाजा मैं अपना मुहासबा करना है, क्या मैं अपने गुनाहों को करते वक्त इस खौफ का शिकार होती हूँ कि कल मुझसे इसके बारे में पूछा जाएगा। इन आयतों में हमारे लिए बहुत सारे मुहासबे के नुक्ते हैं। शैतान ने जो अल्लाह ताला से चैलेंज किए थे, क्या हम इसका हिस्सा तो नहीं। जिसने अल्लाह ताला से कहा था, मैं तेरे बंदों में से एक बड़ा हिस्सा लेकर रहूँगा जो अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा शैतान के हुक्म को मानेगा। क्या शैतान को मैं अपना अब्दी दुश्मन समझती हूँ? क्या शैतानी बातों पर मेरा रवैया वही होता है जो दुश्मन की बात को सुनकर होता है? क्या शैतान मुझे आरज़ुओं में मुब्तला तो नहीं कर चुका? क्या शैतान मुझे सीधे रास्ते से बहका तो नहीं चुका? क्या शैतान के बहकावे पर मैं जिस्म में ऐसी तब्दीलियां तो नहीं करवाती जो फितरत के ख़िलाफ़ हों? मसलन भवों के बाल नुचवाना, टैटूस बनाना, जिस्म को गुदवाना। आजकल तो क्या कुछ आ गया, जिस्म में सिलिकॉन के बैग्स रखवाए जाते हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। याद रखिए, दुनिया में जहाँ भी निफाक होता है उसकी सबसे बड़ी वजह इज़्ज़त है, जो वो दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। तो पारे के आखिर में आयत 138 से लेकर अगली चंद आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है। और मुनाफिकत की वजह क्या होती है? कैसे लोग दुनियादारों में भी अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं और दीन वालों में भी अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन ना इनको दुनिया मिली ना आखरत मिलेगी। मुनाफिक लोग दोजख के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। फिर बताया जा रहा है कि मुनाफिकीन की महफिलों में ना बैठो। मुनाफिक की एक पहचान नमाजों की सुस्ती है। हम अपना जायज़ा लेना चाहते हैं, क्या हम मुनाफिक हैं या मोमिन? अपनी नमाजों से अंदाज़ा लगा लें। मुनाफिक का दिल नमाज में नहीं लगता, इसको हाईलाइट करें। और पारे के आखिर में चार नुकाती प्रोग्राम है निफाक से बचने का। सबसे पहला, क्या पिछली ज़िंदगी के गुनाहों से तौबा करो, पिछली मुनाफिकाना हरकतों से तौबा। अगली चीज़ है इस्लाह, यानी आइंदा अपना अमल सही रखो। और तीसरी चीज़ है अल्लाह का दामन थाम लो, यानी इसकी किताब से जुड़ जाओ जो अल्लाह ने भेजी है। چوتھی چیز ہے علم کی طرف آؤ، اس کو پڑھو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. پورا پارا ہمیں اللہ کی غلامی میں آنے کا سبق دیتا ہے اور اپنے اندر سے خیانتوں کو نکالنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے. آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ یہ موضوع پڑھتے جاتے ہیں بندہ اپنی نظروں میں مجرم بنتا جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے، خلاصہ کر دیتی ہوں کہ خیانت کیا ہے. قول اور فعل کا تضاد. منافق کی علامات میں سے ایک بڑی علامت امانت میں خیانت. اور چونکہ نفاق کی یہ ایک علامت ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقت کے اندر ہی خیانت آتی ہے. کیونکہ نفاق اتنی بری بیماری ہے کہ آپ اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. تو جب خیانت آئے گی تو نفاق آئے گا نا، تو خیانت کہاں اچھی ہوگی. تو منافق کے پاس جب امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. عربی زبان میں اس کو غش کہتے ہیں، دھوکہ. خیانت بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے، اس کو غلول بھی کہتے ہیں. اور مومنوں کی صفت والذینہم لیاماناتہم وعہدہم راعون، سورۃ مومنون آیت نمبر 8. مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی نگہداشت کرتے ہیں. تو مومن کی بڑی شان ہوتی ہے. اور منافق کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ خود کو ٹھیک نہیں کرتا لیکن دوسروں پہ الزام لگاتا ہے. سورۃ آل عمران 161 میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات کہی تھی کہ وما کان لنبی ان یغل، نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کہ خیانت کرے گا تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. تو نبی کے اوپر بھی لوگ شک کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی نرمی تھی، خیر خواہی تھی. آپ کے دل میں حتیٰ کہ منافقین کے لیے بھی ڈر تھا، تو آپ کبھی کبھی ان کی حمایت کر دیتے. تو اللہ نے اس سے بھی آپ کو روک دیا جو آج ہم نے اپنے بارے میں پڑھا کہ ولا تکن للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بن جائیے. سورۃ انفال آیت 58 میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سورۃ مومن آیت 19 یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں امانت کی تاکید کی، خیانت سے بچنے کا حکم دیا. مسند احمد میں ابو امامہ باہلی سے روایت ہے یتبع المومن علی الخلال کلہا الا الخیانۃ والکذب، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. نہ یعنی مومن خیانت کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے. اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لالچ بھی ہو سکتا ہے، بے حیائی کے کام میں بھی کبھی اس سے ملوث دیکھا جا سکتا ہے، لیکن خیانت نہیں کرتا. غیبت بھی ہو جاتی ہے لیکن خیانت نہیں ہوتی. اور ترمذی کی روایت ابو سعید الخدری سے التاجر الامین الصدوق، سچا اور امانت دار مسلم تاجر سوداگر کیا ہوگا؟ ما شہداء یوم القیامہ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ابو داؤد کی ایک روایت ہے سفیان بن اسعید سے، آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات جھوٹی بیان کرو جب کہ وہ تم کو اس میں سچا سمجھتا ہو. یا بیپرل فول کے سارے جھوٹ دیکھ لیجئے، لوگ تو آپ کو سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا لیکن اصل میں آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کسی کا اتنا روب ہے اس انداز کے جھوٹ کو بھی آپ نے خیانت سے تعبیر کیا، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اسی طرح حضرت انس جو بہت عرصہ تک آپ کے خادم خاص رہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا خطبہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے، اس کا بھی ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں امانت میں بھروسہ کرنا ہے چیزوں کا ہر لحاظ سے، جو ہم کچھ چیزیں دیکھ بھی چکے، عہدے بھی امانت، ذمہ داریاں بھی امانت. ہمارے ہاں مختلف تصور ہیں، بہت مختصر قسم کے، محدود قسم کے. ہم سوچتے ہیں کہ مال دولت نقد پیسہ زیور اسی میں امانت ہے، جب مانگیں تو پوری دے دو. حالانکہ یہ ہیں، لیکن سب سے بڑی امانت اللہ کی امانت. اس سے اگر ہم بات کا آغاز کریں نا، کیونکہ خالق کا سب سے زیادہ حق ہے، اس نے کیا امانت رکھوائی ہے ہمارے پاس؟ سورۃ احزاب 72 ان ناردنا الامانت علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے جبکہ انسان نے اٹھا لیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سی امانت تھی جو انسان نے اٹھا لی؟ अब आपको मुझे तो वो वक्त नहीं याद, ये क्या था, हमें अल्लाह के नबी ने बताया ना, तो वो है दीन की अमानत, इताअत की अमानत, और ऑफ कोर्स ये कुरान भी एक अमानत है। बाइख्तियार ज़िंदगी दी, जिस्म दिया कि इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, यानी आप विल पावर कह सकते हैं, चॉइस ऑफ फ्रीडम जो दी, ये सब कुछ अमानत है। फिर इसी तरह अपनी ज़ात की अमानतें भी हैं हमारे पास, ज़िंदगी अमानत, जिस्म अमानत, ये जिस्म हमारी ज़ाती जागीर नहीं है, अल्लाह ने हमारे पास रखवाया है, आँख हाथ कान, ये सब कुछ अमानत है। सारी दुनिया की दौलत खर्च कर लेते, ना एक आँख खरीद सकते थे, ना एक बाल पैदा कर सकते। आज भी नकली बाल लगते हैं ना, लाखों रुपए लगा कर लोग आर्टिफिशियल बाल लगवाते हैं, जो ना बढ़ते हैं और ना इनमें वो जान होती है, सिर्फ देखने में वो आपके सर में चिपके हुए होते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जिस्म के एक एक उज्व की अमानत का हक अदा करने की तौफीक दे, कानों की, आँखों की, ज़ुबान की, खयानतों से अल्लाह हमें बचाए, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में खैर और आफ़ियत को डाल दें।